ये रेडियो नेपाल है। अब मुकेश कुमार मिश्र से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। काठमांडू घाटी समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रदूषण फिर से बढ़ने के कारण सजगता अपनाने का विज्ञों ने दिया सुझाव। और पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि फर्जी भूटानी शरणार्थी मामले में शामिल सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा। आज प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी का ज्ञापन पत्र लेते हुए प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि दोषी को छोड़ा न जाए और निर्दोष को सजा न मिले, इस बात को लेकर सरकार स्पष्ट है। ये कहते हुए कि वर्तमान सरकार सुशासन, समृद्धि और संविधान के क्रियान्वयन में पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुटी है, उन्होंने कहा कि किसी भी दबाव या प्रभाव में नहीं पड़ेंगे और पीछे भी नहीं हटेंगे। बता दें कि रापरपा के अध्यक्ष राजेन्द्र लिंगदेन ने विक्रम संवत 2046 साल के बाद वाले राजनीतिक कर्मियों और कर्मचारियों की संपत्ति छानबीन करने की मांग के साथ ज्ञापन पत्र प्रधानमंत्री को सौंपा था। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने नेपाल के लिए वित्तीय निवेश संबंधी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आज काठमांडू में उद्घाटन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि वित्तीय निवेश के नए स्रोत और अवधारणा की खोज की दृष्टि से सम्मेलन आयोजित होना बहुत ही सकारात्मक है। मौके पर अर्थमंत्री डॉ प्रकाश शरण महत ने बताया कि मासिक रेमिटेंस करीब 80 अरब और विदेशी विनिमय संचिति 10.9 अरब डॉलर मौजूद है, जो कि 9 महीने से अधिक समय तक व्यापारिक सामान और सेवा आयात करने के लिए पर्याप्त है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि सरकार राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद गंदगी को साफ करने के अभियान में है। आज प्रधानमंत्री कार्यालय में कचरा व्यवस्थापन संबंधी बैठक में प्रधानमंत्री प्रचंड ने कहा कि शहर की सुंदरता और स्वस्थ जीवन के लिए गंदगी का व्यवस्थापन बहुत ही जरूरी है। प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहाल प्रचंड के साथ आज राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने ने मुलाकात की। प्रधानमंत्री प्रचंड के प्रेस सलाहकार गोविंद आचार्य ने बताया कि प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में हुई मुलाकात में उनके बीच समसामयिक राजनीतिक विषय में बातचीत हुई थी। इस दौरान सभापति लामिछाने ने कहा कि भ्रष्टाचार और अनियमितता के विरूद्ध सरकार के अभियान में उनका पुरजोर समर्थन और साथ रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी भूटानी शरणार्थी मामले में सरकार के काम को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने में उनका पूरा साथ रहेगा। नेकपा एमाले ने एक साल की कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम संचालन करने की बात कही है। आज पार्टी मुख्यालय ललितपुर में बुलाए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रचार विभाग के उप प्रमुख विष्णु रिजाल ने बताया कि मिशन ग्रासरूट अभियान से प्राप्त सुझाव के आधार पर आगामी जेठ से चैत तक वार्षिक कार्ययोजना बनाकर कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसी बीच एमआरए ने आज दोपहर 3 बजे के लिए निर्धारित स्थायी कमेटी की बैठक को कल सुबह 8 बजे के लिए टाल दिया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
नेपाल टेलीकॉम को 4G भिडियो कल गर्दा नो बोर्जी नेपाल टेलिकम को 4G
सबैको यो विश्वास हो नि नेपाल टेलिकम को 4G
गेम खेल्दा नि टेन्सन नो जी नेपाल टेलिकम को 4G आफ्नो भन्य आफ्नै हो जी नेपाल टेलिकम को 4G
नेपाल टेलिकम राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। गंडकी प्रदेश के नवनियुक्त 4 मंत्रियों ने पद तथा गोपनीयता की शपथ ली है। इसके साथ ही आज प्रदेश सरकार की 7 सदस्यीय मंत्रिपरिषद को पूर्णता मिल गई। आज एक समारोह में गंडकी के प्रदेश प्रमुख पृथ्वी मान गुरुंग ने नवनियुक्त मंत्रियों को पद तथा गोपनीयता की शपथ दिलाई। बता दें कि मुख्यमंत्री सुरेन्द्र राज पांडे ने आज कांग्रेस से महेन्द्र ध्वज जीसी को कृषि तथा भूमि व्यवस्था मंत्री, दीपेन्द्र बहादुर थापा को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण और जीत प्रकाश आले मगर को आर्थिक मामला और माओवादी से रेशम बहादुर जुगजाली को भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मंत्री पद पर नियुक्त किया है। वैशाख 29 और 30 गति को होने वाले 6 हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए परराष्ट्र मंत्री एनपी साउथ ने आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका के लिए प्रस्थान किया। परराष्ट्र मंत्रालय के मुताबिक वे वैशाख 30 गते सम्मेलन को संबोधित करेंगे जो शांति समृद्धि और उत्थान भविष्य के लिए साझेदारी के नारे के तहत होगा। अपने दौरे में परराष्ट्र मंत्री साउथ बांग्लादेश सरकार के उच्च पदस्थ व्यक्तियों से मुलाकात करेंगे और सम्मेलन के दौरान विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुखों के साथ भी भेंटघाट के उनके कार्यक्रम हैं। काठमांडू घाटी में बारिश की कमी और आग लगने की घटनाएं बढ़ने से वायु प्रदूषण फिर से बढ़ने लगा है। स्वास्थ्य विज्ञों ने बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि वायु प्रदूषण से पुराने मरीजों, बच्चों और ज्येष्ठ नागरिकों को खतरा है। बताया जा रहा है कि वाहनों से निकलने वाले धुएं से पर्यावरण और भी ज्यादा प्रदूषित हो रहा है। मौसमविद गोविंद झा के मुताबिक प्रदूषण के कारण काठमांडू घाटी समेत देश के विभिन्न स्थानों में मौसम पूरी तरह साफ नहीं हो पाया। उप प्रधान एवं गृह मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि आपदा की घटनाओं को शून्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम जरूर किया जा सकता है। आज गृह मंत्रालय में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन कार्यकारी समिति की बैठक में गृह मंत्री श्रेष्ठ ने तैयारी में कमी की शिकायतें आने का जिक्र करते हुए तैयारी को प्रभावी बनाने की ओर संबंधित मंत्रालयों और निकायों के अधिकारियों का ध्यान आकर्षण कराया था। बैठक में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री मोहन बहादुर बसनेत ने आपदा का समय पर प्रबंधन करने की ओर ध्यान आकर्षण कराते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा की गई तैयारियों में कोई कमी न आने देने की प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने कहा कि आग लगे और जंगल की आग का मानव, वन्य जीवन और पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ता है, इसलिए आग लगाने वालों पर कार्यवाही करने और उपभोक्ता समितियों को और अधिक सक्रिय बनाने की जरूरत है। बैठक में संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री अमन लाल मोदी ने कहा कि आपदा की पूर्व सूचना प्रणाली और पूर्वानुमान का आधुनिकीकरण करना जरूरी है। न्याय, सुशासन और दीर्घकालीन विकास के लक्ष्य के संदर्भ में दक्षिण एशिया विषयक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आज से काठमांडू में शुरू हुआ है। सम्मेलन में विभिन्न देशों के 50 से अधिक व्यक्तित्व सहभागी हैं। मुगु में हिमस्खलन के कारण व्यक्ति लापता होने की घटना को एक हफ्ता हो गया है, लेकिन सुरक्षाकर्मी सहित की टोली घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाई है। जिला प्रभारी कार्यालय के डीएसपी महेश बसनेत के अनुसार छापाखोला में बेस कैंप लगाकर सुरक्षाकर्मी रोज सुबह घटनास्थल तक जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर बर्फ जमे होने के कारण घटनास्थल तक नहीं पहुंच पाते। सुरक्षाकर्मियों की टोली के लोग एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं। जिला मुख्यालय से और सुरक्षाकर्मियों को भेजने की तैयारी की गई है और जो बीमार हैं उन्हें वापस बुला लिया गया है। बता दें कि इसी वैशाख 22 गते मुगु की कारमारोंग गांव पालिका वार्ड नंबर 1 और 2 के च्याखू लेक में आए हिमस्खलन के कारण यारसा चुनने के लिए मुगु के पाटन पहुंचे जुमला पातारासी गांव पालिका वार्ड नंबर 2 तल्फी गांव के 15 में से तारा सिंह कार्की, पुन्न सार्की और वीर बोहरा लापता हो गए। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान की एक उच्च अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में इमरान खान को 17 मई तक गिरफ्तार न करने का आदेश दिया है। 9 मई को अलकादिर ट्रस्ट मामले में हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान के खिलाफ लाहौर में कोर कमांडर के आवास पर हमले की योजना बनाने सहित कम से कम 3 नए मामले दर्ज किए गए थे। उनके वकीलों ने इन मामलों में जमानत के लिए आज इस्लामाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की एक सदस्यीय पीठ ने सुनवाई के बाद फैसला सुनाया कि इमरान खान को नजरबंदी के बाद उनके खिलाफ दायर किसी भी आरोप का सामना नहीं करना चाहिए। इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने आज अल कादिर ट्रस्ट मामले में इमरान खान को 2 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच ने कहा है कि अगली सुनवाई में दलीलें सुनने के बाद जमानत देने या खारिज करने का फैसला लिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भूटानी शरणार्थी प्रकरण में संलग्न सभी को कानून के दायरे में लाया जाएगा, प्रधानमंत्री प्रचंड का कथन। काठमांडू घाटी समेत देश के ज्यादातर हिस्सों में प्रदूषण फिर से बढ़ने के कारण सजगता अपनाने का विज्ञों ने दिया सुझाव और पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में 17 मई तक गिरफ्तार न करने का दिया आदेश। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।